नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना जी। नमस्कार गिरीश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार प्रियंका, धन्यवाद आपका और सभी श्रोता को हम स्वागत करते हैं।
आगे बढ़े उससे पहले मुख्य समाचार जान लेते हैं। अचंत शरत कमल और मणिका बत्रा पेरिस ओलंपिक के लिए 6 सदस्यीय भारतीय टेबल टेनिस टीम का नेतृत्व करेंगे। भारतीय पुरुष डबल्स और महिला डबल्स की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। मुक्केबाज परवीन हुड्डा को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने निलंबित किया, पेरिस ओलंपिक कोटा गंवाने की आशंका। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। और बात टेबल टेनिस कोर्ट की, अचंत शरत कमल और मणिका बत्रा पेरिस ओलंपिक के लिए 6 सदस्यीय भारतीय टेबल टेनिस टीम का नेतृत्व करेंगे। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ ने टीम की घोषणा कर दी है। पुरुष टीम में शरत कमल, हरमीत देसाई, मानव ठक्कर होंगे। महिला टीम में मणिका बत्रा, श्रीजा अकुला, अर्चना कामत को जगह मिली है। पुरुष टीम में जी साथियान और महिला टीम में अहिका मुखर्जी रिजर्व खिलाड़ी के रूप में होंगे। भारतीय खिलाड़ी पेरिस में सिंगल्स और टीम इवेंट में हिस्सा लेंगे। पुरुष सिंगल्स में शरत कमल और हरमीत देसाई तथा महिला सिंगल्स में मणिका बत्रा और श्रीजा अकुला चुनौती पेश करेंगे। अगर देखा जाए तो ये जो निर्णय हुआ है वो लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंगली हुआ है। तो जो अचंत शरत कमल का ये 5वां ओलंपिक है, 41 वर्ष के हो चुके हैं और शायद आखिरी भी कह सकते हैं ये उनका ओलंपिक हो।
मुझे तो लग रहा है सबसे अनुभवी खिलाड़ी जो भारतीय दल जाएगा पेरिस, उसके सबसे जो अनुभवी खिलाड़ी, 5 ओलंपिक्स का अनुभव इनके कंधों पर। तो बिल्कुल सही कहा, 6 सदस्यीय टीम का जो हमारी टेबल टेनिस फेडरेशन ने इसकी घोषणा की है वो रैंकिंग के आधार पर, जो मार्च में अभी रैंकिंग जारी थी उसके आधार पर। लेकिन सबसे अच्छी बात रही कि जो कुछ दिन पहले ही मणिका बत्रा, जो कि पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी टॉप 25 के अंदर आई, अभी उनकी जो रैंकिंग है वो 24 है वर्ल्ड रैंकिंग, तो एक लिहाज से भारत का सबसे पलड़ा यहां पर होता है। लेकिन यहां पर आप देखें तो जैसे 2 खिलाड़ी जो रिजर्व में रह गए, साथियान गुणशेखरन, और 2018-2022 में वो थे, यहां खेला था उन्होंने, और अब वो ये रिजर्व खिलाड़ी है क्योंकि रैंकिंग के आधार पर हुआ तो इसलिए उनको एज अ रिजर्व खिलाड़ी रखा। उसी तरह आयका मुखर्जी है, वो भी पेरिस जाएंगी, गुणशेखरन भी पेरिस जाएंगे, लेकिन ये दोनों गेम्स विलेज में नहीं रहेंगे, क्यों चोटिल हो जाता है, कोई लास्ट में जरूरत पड़ती है तो वापस ये टीम में जो है आएंगे। तो मणिका बत्रा, श्रीजा कुला, अर्चना कामत। तो आयका मुखर्जी की बात प्रियंका मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी अनफॉर्चुनेट रहा, वर्ल्ड चैंपियनशिप बुसान में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, वर्ल्ड नंबर 1 सुन यिंगजिसा है चाइना की, उनको भी हराया। लेकिन जो जब सेलेक्शन की बात हुई तो अर्चना कामत की रैंकिंग 103 थी और इनकी रैंकिंग 33 पीछे थी, इस लिहाज से काफी विचार किया गया। और यहां पर एक पूर्व इटली के खिलाड़ी हैं मैसिमो कोस्टेंटिनी, वो भारतीय टीम के कोच होंगे, उनको लाया गया बतौर वहां पर एक तरह से विशेष सिलेक्शन कमेटी में भी, और काफी जो आपस में बात विचार करने के बाद ये टीम की घोषणा हुई है। तो लेकिन हालांकि अब जैसे हरमीत देसाई है वो नेशनल चैंपियन है, वर्ल्ड रैंकिंग उनकी 63 है, मानव ठक्कर है वो 62 है, एक दो आगे पायदान में है, लेकिन जो सबसे शरत कमल है वो सबसे अनुभवी खिलाड़ी, वर्ल्ड रैंकिंग 40,
मतलब देखा जाए तो 41 वर्ष के हैं, सबसे अनुभवी हैं, सबसे उम्रदराज है और 40वां स्थान उन्होंने हासिल किया है।
और सबसे मजेदार बात कि 8 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत
चुके हैं
तो वो बताता है। तो अब एज अ हाई, अब क्योंकि 40 है, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं आज के दिन वास्तविकता की बात करूं तो ज्यादा उम्मीद अभी मेडल की नहीं लग रही है मुझे, लेकिन जब वहां पर होंगे, अनुभव उनका सामने होगा तो वो अलग बात होगी। और ये भारतीय दल के लिए एक सबसे अच्छी बात यह रही कि प्रथम बार 2008 से जो ओलंपिक्स में टीटी को शामिल किया गया उसके बाद बतौर टीम भारतीय टीम पहली बार जा रही है। अदरवाइज क्या हो रहा था, जो खिलाड़ी जा रहे थे वो अपने बेसिस पे, मतलब कि वो इंडिविजुअल बेसिस पे जा रहे थे। प्रथम बार ये कि भारतीय दल एक वहां पर नेतृत्व करेगा जिसके 6 खिलाड़ी होंगे टीटी में,
तो एक अच्छी खबर है। और क्योंकि मणिका बत्रा का अगर पिछला परफॉर्मेंस देखिए अभी सऊदी स्मैश में, तो चीन की खिलाड़ी को जो टॉप सीडेड है नंबर टू पर उनको हराया, तो एक काफी संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
बिल्कुल, अभी आप जिद्दा की बात कर रही थी, वहां पर सऊदी इस मैच में खेला, उसके पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड टीटी जो लीग हो रही थी उसमें भी अच्छा खेला उन्होंने। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है और इंडिविजुअल कैटेगरी में काफी अच्छा इनका रहा है। तो जो आप बात कर रही थी कि जो चाइना की गोल्ड मेडलिस्ट है वांग मैन्यू, उसको कई बार मात दे चुकी है, तो अब ये रहेगा कि वहां पर अब ओलंपिक्स में सिर्फ चाइना और एक देश नहीं होगा जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे, वहां पर इनको चुनौती मिलेगी। और पिछले बार भी ओलंपिक में निराशा हासिल हुई थी, उम्मीद करते हैं कि अब जो कोचेज हैं, जो खामियां हैं वो दूरी करके और कम से कम एक जो एक नए स्पोर्ट में हमें मेडल मिलेगा।
भारतीय पुरुष डबल्स और महिला डबल्स की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के आर के याप और जे आर एफ की जोड़ी को 21-7, 21-14 से हराया। महिला डबल्स में तनिषा क्रास्टे और अश्वनी पोनप्पा ने दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी वाई ली और एस सी शिन को 21-15, 21-23, 21-19 से पराजित किया। कल सेमीफाइनल में उनका सामना थाईलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में भारत के मिराबल वांग मिसनाम को हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें थाईलैंड के कुनलावुत विटरसन ने 21-12, 21-5 से शिकस्त दी। लाजमी था सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा तनिषा क्रेस्ट और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ियों से, क्योंकि ये लोग भी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और आज जिस हिसाब से सात्विक और चिराग ने प्रदर्शन किया बहुत आसानी से हरा दिया।
देखिए, अगर आप सात्विक चिराग की बात करें तो सात्विक चिराग के सामने तो कोई चुनौती ही नहीं थी। जो इन्होंने 12 मिनट में पहला गेम जीता 21-7 से और फिर 24 मिनट में 21-14 से जीता, उन मलेशियाई जोड़ी को हराया इन्होंने, जुनादी आरिफ और रॉय किंग गैप को। लेकिन वहां पर अब कल जो मुकाबला होगा वो भी अनसीडेड है, कोरिया के मिंग ची यूलुग और टैंग क्वी विग, तो इनके लिए मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन आज सबसे जो यहां पर भारतीय टीम को जो ध्यान देनी होगी वहां पर देना होगा अश्वनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो के सेमीफाइनल गेम पर। तो आज हमें ये तो लग रहा है कि क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, लेकिन वो स्ट्रेट गेम्स में जीतना था। 21-15 से पहला आप गेम जीत रहे हैं और 21-23 से दूसरा हार गए, और वहां पर एक समय था जब उन्होंने बढ़त बना ली थी और उसके बाद दो बार ड्यूस होने के बाद फिर वो गंवाया। हालांकि जो तीसरा भी जो गेम था वहां पर भी एक समय वो बराबरी करने के बाद पिछड़ रहे थे, लेकिन लास्ट के जो 5 पॉइंट उन्होंने लिए वो काफी आक्रामक सूझबूझ से लिया। लेकिन अब जो उनका कल जो मुकाबला होगा, और एक चीज और बताऊं मैं, इन्होंने आज सिनयूंग चैन जो खेल रही थी वहां पर साउथ कोरिया, उनको रहा वो एक समय ओलंपिक 2016 में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ही रही है, लेकिन डबल्स में अब उनका जो अब कल का जो मैच है वो कड़ा होने की उम्मीद है, क्योंकि थाईलैंड की जोड़ी से खेल रहे हैं और वो विश्व नंबर 10 है। तो जो भी कमियां हुई, क्योंकि हालांकि ये काफी समय के बाद मतलब अभी चोट से भी ये जूझ रहे थे और इनकी जोड़ी अभी रिसेंटली बनी है, तो इस लिहाज से अनुभव और जो एक युवा खिलाड़ी की जोड़ी है तो यहां पर अब इनको कल बेहतर करना पड़ेगा। प्रियंका,
अब बात करते हैं मुक्केबाजी की। महिला मुक्केबाजी में निखत जरीन और अन्य तीन मुक्केबाज कजाकिस्तान के अस्ताना में एलोडा कप 2024 के फाइनल में पहुंच गई हैं। निखत के अलावा 48 किलोग्राम भार वर्ग में मीनाक्षी, 60 किलोग्राम भार वर्ग में मनीषा और 50 किलोग्राम भार वर्ग में अनामिका ने फाइनल में जगह बनाई है। देखा जाए तो जब बॉक्सर्स की पेरिस ओलंपिक की बात की जाए तो उसमें निखत जरीन ने जगह बना ली है। इसके अलावा परवीन भी पेरिस ओलंपिक के लिए जगह बनाई गई है, लेकिन आज इस हिसाब से वाडा का फैसला आया क्योंकि पिछले 12 महीनों में 3 बार अपना ठिकाना नहीं बताने के कारण विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज परवीन हुड्डा को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने निलंबित कर दिया और इससे वे पेरिस ओलंपिक का कोटा भी गंवा सकती है। तो ऐसी क्या सिचुएशन बनी, क्या परिस्थितियां बनी?
देखिए, उनके वकील ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ जो है चुनौती देंगे और मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि 1.5 साल का उन पर बैन है, तो अगर घटा भी तो अब या दो महीने तीन महीने भी कर दे, हमारे अभी जुलाई
26 जुलाई
जो है वो पेरिस ओलंपिक के जाना है, और अभी इनका आप देखें तो कई समय से ये कोई प्रमुख जो है प्रतियोगिता में भी भाग नहीं लिया है इन्होंने। तो होता क्या है प्रियंका, जो वाडा की गाइडलाइंस है उसमें ये होता है कि आपको पिछले 12 महीने में आपको 3 बार बताना पड़ता है कि कहां आप उपलब्ध रहेंगे, अपना दिनचर्या बतानी पड़ती है, कहां आप रुकेंगे, किस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिससे अगर कोई वाडा के ऑफिसर को अपने सैंपल लेने हैं तो इन्होंने कोई वेयर अबाउट नहीं बताया है, जो कि इनके कोच जो सुधीर हुड्डा है वो भी मानते हैं कि गलत है। तो अब ये देखना है कि जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन है और फिर जो बॉक्सिंग फेडरेशन है वो इसमें कैसे दिखता, हमारे पास 4 कोटा है जिसमें से अगर ये नहीं जा पाती है तो कम से कम वहां पर हमें एक झटका लग सकता है।
जी हाँ, तो एक तो ये थोड़ा सा निराशाजनक खबर है हमारी खेल जगत से। अब आगे बढ़ते हैं, आईपीएल की बात करते हैं। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 12 ओवर में 89 रन बना लिए हैं 3 विकेट खोकर। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मतलब मुंबई इंडियंस का अगर आप देखा जाए इस बार जो आईपीएल में उनका प्रदर्शन रहा है बहुत ही खराब कह सकते हैं, क्योंकि 5 बार की चैंपियन रह चुकी है और अंक तालिका में इस बार सबसे आखिरी स्थान पर है।
खैर, आज का जो मुकाबला है वो एक डेड रबर है जो लखनऊ और मुंबई के बीच में, इस मैच का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला टेबल्स पे, और खास करके केकेआर, आरआर और एसआरएच ये 3 टीम तो जा ही चुकी है प्लेऑफ्स के लिए, और ये वाला मैच हाँ एक प्राइड की बात होती है कि कोई भी जीतेगी वो आखिरी जो मैच है, और मुंबई अपने घरेलू मैदान में खेल रहे हैं, आज अर्जुन तेंदुलकर भी खेल रहे हैं वहां पर। तो लेकिन मुंबई की टीम आपको बताऊं कि शुरुआत प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ये बिखर गई थी जब रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया, तो वहां से ही मुझे लग रहा है कि टीम में एक बिखराव हुआ। लेकिन बात हमें करनी चाहिए जो है वो कल के मुकाबले की, कल का मुकाबला जो होगा वो सीएसके और आरसीबी का होगा, उसमें अगर आरसीबी जीतती है तो उनको औसत अपना जो है वो ये मान के चल रहे कि अगर वो 200 रन बनाते हैं, एक साधारण सा हम एक उदाहरण दे सकते हैं, अगर 200 रन बनाते हैं तो 182 पर सीएसके को रोकना होगा, अगर सीएसके 200 बनाती है तो उनको ये लक्ष्य 18वें ओवर के अंत 18.1 में बनाना होगा। अगर यहां पर नंबर वन तो केके आ रहा है, अभी मैं नंबर टू की बात ही नहीं कर रहा कि कौन होगा, अभी काफी कॉम्बिनेशन ये है इसमें, लेकिन मेन है कि आरसीबी क्या अपनी चौथी टीम बनेगी या सीएसके चौथी टीम बनेगी, उस पर सारा दारोमदार वो कल के मैच पर निर्भर करेगा प्रियंका
जी। क्योंकि अगर मतलब दोनों के लिए ये कल वाला मैच तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आखिरी मैच है, चेन्नई का आखिरी मैच है, तो देखते हैं कि कौन बाजी मारता है। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीतेगी उसके 14 अंक होंगे, चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी उसके 16 अंक हो जाएंगे।
लेकिन यहां पर एक और बात है जो कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है बेंगलोर के लिए, खास करके बेंगलुरु में काफी बारिश हो रही है और अगले 2 दिन में काफी बारिश की संभावना है। अगर यहां पर एक अंक भी ये बांट लेते तो सीएसके तो ऐसे ही पहुंच गई, अभी सिर्फ 2 अंक चाहिए। इस लिहाज से बेंगलुरु जो है अपने घर पे खेल रही है और उसके जो ग्राउंड स्टाफ है वो कोशिश करेंगे कम से कम 5 ओवर का मैच तो वहां पर हो, बारिश कितनी भी खलल डाले वहां पर उनको 2 अंक चाहिए।
तो देखते हैं कल क्या होता है। आपको कल के मैच के बारे में बता दें, कल सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, और इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंच गया है। तो टॉप 3 टीम्स तो डिसाइड हो गई हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद।
बिल्कुल, तो केकेआर के अब 19 अंक है, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता
जी।
आरआर के 16 है, उनका एक मैच बाकी है, अगर वहां पर वो, और एसआरएच के 15 अंक है, उनका भी एक मैच बाकी है, और केकेआर और आरआर के बीच में ही मैच होना है, तो ये सारा कुछ अभी यहां हो सकता है कि कौन सी टीम, हो सकता है आरआर नीचे आ जाए, दूसरी कोई टीम सेकंड में हो जाए, तो नंबर 1 और नंबर 2 आपको पता ही है प्लेऑफ में जो पहुंचते हैं उनके पास एक और अतिरिक्त मौका होता है फाइनल में जाने का।
तो देखते हैं कल वेट एंड वॉच की स्थिति रही। और जाते जाते आपको बता दें कि ब्राजील को फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी मिल गई है। इससे पहले ब्राजील ने 1950 में पुरुष विश्व कप और 2014 विश्व कप का आयोजन किया था। समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। बुबना जी, आप स्टूडियो में आए और विस्तार से खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियंका।
श्रोताओं, अब पूरी स्पोर्ट्स कैन टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम यही संपन्न करने की। नमस्कार।